मुरली में हमें अनेक सारे बाबा के सभी इशारे, बाबा से स्वमान की बातें, नशे की बातें, खुशी खुमारी, अनेक प्रकार की बातें और सारे सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, जितनी भी विंग्स की सेवाएं हो रही है, जितने भी नए आविष्कार हुए हैं, सब मुरली के द्वारा है ना। तो ऐसी मुरली जो स्वयं भगवान परमधाम से आकर हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, जिस मुरली का भक्ति मार्ग में भी बहुत गायन है कि गोपियां अपना सारा काम करते हुए छोड़कर मुरली की आवाज सुनते ही दौड़कर आ जाती थी। लेकिन वो तो कौन सी मुरली थी, वो काठ की मुरली की बात करते है ना, भगवान श्री कृष्ण को मानते। लेकिन यहां बाबा सत्य बात हमें बताते हैं कि ये कौन सी ज्ञान की मुरली है, जिस मुरली के बजने पर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी दौड़ दौड़ कर अपना काम सब समय पर पूरा करके और वो मुरली सुनने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी मुरली सुनने की विधि क्या है कि मुरली कई बार हम सुनते हैं रोज, लेकिन दो चार पॉइंट भी कभी कभी याद में नहीं होती है, अचानक कोई पूछ लेते हैं तो मुरली की पॉइंट खिसक जाती है। तो कारण क्या है ना, तो भोजन जो खाया है उस भोजन को हजम करना, जैसे बाबा कहते हैं ना, गाय भोजन करती है फिर बैठ करके क्या करती है, जुगाली करती है, तो उसको उगारना है। जब तक हम मुरली की बात दूसरों के साथ में वापस नहीं करते, एक दूसरे से शेयर नहीं करते, आज एक अपना लक्ष्य बना करके देखें कि कम से कम 5-7-10 लोगों को हम मुरली की बात आपस में लेन देन करेंगे, एक एक पॉइंट भी पूछेंगे है ना, तो भी 10 जनों में 10 पॉइंट शेयर हो जाएगी और हमें वो मुरली की बातें सारी याद आने लगेगी। होता क्या है, जैसे बाबा ने कहा कि ये महाभारत काल का समय है, रावण के साथ हमारी माया के साथ युद्ध भी है, लेकिन भगवान हमारा साथी भी है, युद्ध के मैदान में हम सभी हैं। तो इस प्रकार का एक विजन क्रिएट करें कि युद्ध के मैदान में है, 5 विकारों से हमारी युद्ध है और उन पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। तो विजय प्राप्त करने के लिए बाबा हमें गुप्त गुप्त बातें बताते हैं, जैसे वो कोई मल्ल युद्ध होता है ना, तो जिनको वो दांव पेच का पता होता है तो वहां पर मार पड़ने से क्या होता है, अगला घायल हो जाता है। तो उसी प्रकार से माया पर जीत पाने के लिए मुरली की बातें समय पर कैसे याद आए और भगवान की श्रीमत और उनके इशारे और बाबा स्वयं हमारा साथी है, अगर सर्वशक्तिवान बाप साथी है तभी हमारी विजय निश्चित है। अगर भगवान को भूल गए तो फिर तो माया अपना काम करेगी, तो मुरली की बात चली जाएगी इधर उधर। तो इस प्रकार से मुरली का लेन देन करें और मुरली को याद रखने के लिए बाबा देखो कई प्रकार की बातें बताते हैं, कई बार कई जगह के नाम लेते हैं, कई बार पशु पंछी इनका नाम लेते हैं कि बिच्छू के द्वारा क्या सीखो, सांप के द्वारा क्या सीखो, भ्रमरी के द्वारा क्या सीखो, कछुए के द्वारा क्या सीखो, अनेक प्रकार की बातें बाबा मुरली में बताते हैं। तो छोटे छोटे कोडवर्ड अगर हम नोट कर लेते हैं कि आज बाबा ने इसके लिए बोला, उसके लिए 2-4 नाम ही नोट कर लो, कभी किसी भाई बहनों को याद करते हैं किसी कारण से, कभी सूर्य चांद को सितारों को इन चीजों को याद करते हैं, तो वो चीजें भी छोटी छोटी नोट कर लेते हैं तो मुरली को याद करना आसान हो जाता है। तो अब जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने कहां से शुरुआत की, आज बाबा कौन बन करके आए हम बच्चों के लिए, तभी आप बोलते भी रहेंगे ना, तो आपका अच्छा रिवीजन होगा, याद भी रहेगी। गरीब नवाज, बाबा गरीब नवाज आया है किस लिए? हम बच्चों को क्या बनाने? कोड़ी से हीरा बनाने और विश्व का मालिक सिरताज बनाने, साहूकार बनाने के लिए बाबा आए हैं। तो इतनी ऊंची पढ़ाई पर हमारा अटेंशन भी कितना हो। कई बार क्या होता है, मुरली सुन भी रहे हैं लेकिन मुरली की मधुर तान लोरी और उधर माया भी एग्जाम लेती रहती है साथ साथ में, वो सुला भी देती है मुरली सुनते सुनते भी। थोड़ी आंखें बंद हो गई, थोड़ी खुली हो गई, सुनी अनसुनी हो गई, जैसे कि थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, आधी पॉइंट सुनी आधी नहीं सुनी, तो ऐसा भी हो जाता है। तो मुरली के टाइम में बड़ा अटेंशन से एक्टिव होकर के बैठना है। दादी हमेशा बोलती थी, दादी जान की, एक्टिव अलर्ट और एक्यूरेट। तो मुरली में इस प्रकार से, और मुरली कौन सुनाता है तो उतना ही रिगार्ड भी हमें चाहिए। तो मुरली सुनने समय पर भी पहुंचना है, ऐसे नहीं केवल तीन दिन की बट्टी है तो हम मुरली के लिए टाइम से आ रहे हैं समझो, और उसके बाद में मुरली सुनी तो सुनी, नहीं सुनी तो नहीं सुनी, कभी मोबाइल पर पढ़ लिया, तो इस प्रकार से नहीं। क्योंकि सुप्रीम टीचर भगवान हमें पढ़ाते हैं तो वो दिखाई भी तो देना चाहिए ना, उतनी वैल्यू भी होनी चाहिए। तो मुरली के टाइम से आधा घंटा पहले जो योग किया जाता है, किस लिए? जैसे बाबा ने कहा, मुरली की पॉइंट कब ठहरेगी बुद्धि में? जब बुद्धि कैसी होगी? पवित्र सोने का बर्तन बुद्धि होगी, तब मुरली की बात बुद्धि में ठहरेगी। तो वो पवित्र सोने का बर्तन बनाने के लिए क्या करना होगा? याद में रहना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आधा घंटा हमें योग में बैठना है। योग से बुद्धि हमारी क्लीन होगी, क्लीन होगी सोने का बर्तन, तो उसमें ये ज्ञान के रत्न, लाखों लाखों रुपए के जो बाबा बोलते हैं ज्ञान के रत्न है, तो ये रत्न फिर उस बुद्धि में टिकेंगे, नहीं तो ये रत्न नहीं समा सकेंगे, है ना। तो सबसे अनमोल कमाई है, पद्मा पदम पति हम बनते हैं, ज्ञान के एक एक रतन लाखों रुपए के। कहीं पर कोई बात बिगड़ गई, कुछ हो भी गया, आपस में टकराव हो गया, मतभेद हो गया, कुछ हो गया, एक पॉइंट ज्ञान की याद आ जाती है अगर मुरली की, कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सपोज ये स्लोगन दिया और वो याद आ गया तो हम क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे तो सारा झगड़ा टल जाएगा। तो मुरली की बातें जो भी है वो बाबा करने के लिए देता है। केवल मुरली सुनने की ही बात नहीं, लेकिन उसको फिर प्रैक्टिकल में लाना है, कि आज याद की क्या क्या युक्तियां बताई, आज बाबा ने कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई कि तुम कौन थे, तुम क्या बन रहे हो, ये स्मृतियां बाबा दिलाते हैं। तो वो स्मृतियां कौन सी थी, उनको दिन भर में याद करना, दूसरों को पूछना, और कई चीजें एक्शन में लाने वाली होती है कि मुरली सुनकर के आज हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। कभी कभी बाबा बोलते हैं बच्चों भोजन मौन में करना है, नहीं तो अगर भोजन मौन में नहीं किया तो माया भोजन खा जाएगी, फिर बच्चों को तंग करेगी, ऐसी ऐसी बातें बताते बाबा। तो भोजन को मौन में करके देखना कि बैठे हैं अनेक लोगों के साथ में, हाल में बैठे हुए भी खाना खाते वक्त मौन में रहकर भोजन करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल करना कि हमने किया कि नहीं किया, फिर वो बात अपने चार्ट में नोट करना। और चार्ट भी अपना, हर एक का अपना अलग अलग हो सकता है, जिसका जैसा पुरुषार्थ उसके अनुसार हर एक अपनी जांच कर सकते हैं। क्योंकि सभी में सब प्रकार की कमियां एक जैसी नहीं होती है, सभी में कोई ना कोई अलग अलग बातें पुरुषार्थ की होती है, तो वो बातों की जांच हम अपना स्वयं का स्वयं चार्ट बना करके और अच्छी रीति से चेक कर सकते हैं। अब आज बाबा ने क्या क्या याद किया, फिर आज का मुरली का सार हो गया, उसके बाद में प्रश्न में कौन सी गुह्य बात बाबा ने बताई जो सबको समझानी है। बाबा ने कहा ये बात सबसे पहले सबको बतानी है, वो गुह्य बात कौन सी? बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। लौकिक में क्या होता है, बाप और दादा अलग अलग होते हैं, यहाँ पर बाबा ने ये राज बताया कि बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं, एक परमात्मा है और एक आत्मा है, एक मनुष्य है, एक भगवान है ना? तो बाप और दादा दोनों इकट्ठे कैसे हैं? ये बात सबको समझानी है दूसरों को। और क्या बोला? हाँ, किसको? बाप और वर्षे को याद करना है, ये बात बाबा ने बताई। और बाबा ने आज की मुरली में विशेष पवित्रता पर बहुत जोर दिया, चार पांच बारी पवित्रता की बात को बाबा ने दोहराया। तो हम किस प्रकार के पवित्र, अभी हम क्या हैं? वर्तमान में योग योगेश्वर, और भविष्य में क्या बन रहे हैं? राज राजेश्वर। तो किस प्रकार से बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया कि अभी तुम डबल सिर ताजधारी बन रहे हो, सिंगल ताज नहीं, केवल। अभी कलयुग में आते तो बिल्कुल कोई ताज नहीं रहा, नो ताज, मोहताज बन गए, लेकिन अभी डबल ताजधारी बन रहे हैं। तो डबल ताज कौन सा? एक ताज पवित्रता का ताज, लाइट का ताज, और दूसरा ताज रत्न जड़ित ताज। तो दो प्रकार के ताज। फिर आज की मुरली का प्रश्नोत्तर के बाद में और विशेष पॉइंट क्या रही मुरली की? बाबा ने सारे सृष्टि चक्र को घुमाया कि ये सीढ़ी का नॉलेज दिया पूरा, कि तुम बच्चे कैसे चढ़ती कला में थे और किस प्रकार के देवता थे, लेकिन उतरते 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 कहां पहुंच गए। ये सारी बातें बाबा ने डिटेल में स्वदर्शन चक्र फिरा करके, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर आगे कैसे वर्णों में हम आते गए और हमारी गिरती कला हुई, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना? फिर रावण ने आकर क्या किया? श्राप दिया। तो आधा कल्प के श्रापित को अब परमात्मा भगवान वापस हमें उठा करके क्या बनाते हैं? देवतुल्य, हीरे तुल्य हमें बनाते हैं। क्या क्या बनाया आज बाबा ने यह भी बातें बताई कि हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई बाबा से। तो कोड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं, मोहताज, नोताज, या बिल्कुल कलाहीन से सिर ताज बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की महिमा का बाबा ने बताया कि तुम कैसा ऐसे बनते हो। राधे कृष्ण दोनों अलग अलग घराने के हैं, ये बात दूसरों को किसी को पता नहीं है, लेकिन हम बच्चों को पता है। तो कैसा हम ऐसे पवित्र देवी देवताएं बनते हैं जो हम सतयुग के मालिक थे। फिर बाबा ने एक बात आज विनाश की भी क्लियर की कि विनाश इस सृष्टि का रहने वाली आत्माएं शरीर छोड़ के जानी है, और विनाश के लिए क्या तैयारी करते हैं? बड़े बड़े बॉम्ब्स भी बनाते हैं और बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं कि बॉम्ब्स गिरे और आग लग जाए, मूसलाधार बारिश होगी, अर्थक्वेक होगी, तो इन सब चीजों के द्वारा विनाश भी होगा। तो इनके पहले हमको क्या करना है? अपनी स्थिति मजबूत बनानी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है और पूरा पवित्र बनना है। तो ये चीजों पर हमें ध्यान देना है। और बताओ आप। हाँ, आसिक मासुक की बात बाबा ने बताई। देखो तुलनात्मक शब्द भी याद रखते हैं ना, तो उनसे भी हमको मुरली की याद आ जाती है कई बार कि ये रात दिन का खेल है, ये उतार चढ़ाव का है, ये हार जीत का है, ये सुख दुख का खेल है। तो आसिक मासुक की याद करने की बात बताई बाबा ने कि किस प्रकार से आसिक मासुक को, जैसे बताया ना, सगाई होते ही कन्या को अपने वर की स्मृति याद में रहने लगती है, तो हमें भी किस प्रकार से आसिक मासुक की तरह उस शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने अमृत वेले का सवेरे सवेरे उठकर बाबा ने कहा याद में रहने के लिए, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है। वैसे भी जो विद्यार्थी पढ़ते हैं या दूसरे भी कोई जिनकी याददाश्त कमजोर है, तो वो भी अगर सवेरे उठ करके किसी भी बात को रिविजन करते हैं तो वो मुरली या दूसरी बातें भी हमारे दिमाग में अच्छी तरह से छप जाती है। तो सवेरे के टाइम का इतना वैल्यू है। तो सवेरे का अमृत वेला भी मुरली के द्वारा ही तो सारी बात बाबा बताते हैं। तो अमृत वेला किस प्रकार से करना है, कैसे अलर्ट होकर के बैठना है, हाथ मुंह धुलाई करके, क्योंकि प्राप्ति करने के लिए आए हैं, तो प्राप्ति करने आए हैं और प्राप्ति हो नहीं और उल्टा विकर्म बन जाए, ये भी होता है। हार और जीत दोनों प्रकार की बातें होती है, नफा भी होता है व्यापार में, नुकसान भी हो जाता है। अनाड़ी व्यापारी होते हैं तो वो नुकसान कर बैठते हैं। उसी प्रकार से अगर अमृत वेले में बैठे हैं और समझो कि मेरे को नींद आने लग गई, और कभी कभी तो खराटे भी आ जाते हैं और पता भी नहीं पड़ता है, तो नींद आने पर क्या होगा, वायुमंडल दूषित होगा। वायुमंडल दूषित होगा तो एक से दूसरे को, जैसे कोई छूत की बीमारी नहीं होती है, अब ये सब हमने लगा रखा है मास्क वगैरह तो क्या है, उसी प्रकार से वो भी एक बीमारी है कि एक को नींद शुरू होगी तो दूसरे तीसरे पूरी लाइन को भी पहुंच जाती है। होता है ना ऐसा, अनुभवी तो हम सब हैं। बाबा बोलते हैं बच्चों से हाथ उठवाते हैं तो सभी उठा देते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं सदा सदा समझ करके उठाओ, तो धीरे धीरे वापस नीचे की ओर कर लेते हैं। तो वो समझ भी होनी चाहिए कि कमाई करने के लिए बैठे हैं, और अगर दुकान खोलकर बैठा है और अगर कोई व्यापारी को नींद आ रही है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, तो माल तो चोरी हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं कि अलर्ट होकर के बैठे कि कमाई के लिए बैठे हैं, हमारे से किसी दूसरे का नुकसान भी न हो, कि दूसरों को भी अगर ऐसा वाइब्रेशन जाए सुस्ती का तो उनको भी नींद आने लगेगी। तो उससे अच्छा है कि हम वहां से स्थान छोड़ करके बाहर चले जाएं, घूमते फिरते चलते फिरते बाबा की याद में रहें, लेकिन पुरुषार्थ को छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है या सुस्ती हो रही है तो चलो कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसा आदत अगर एक दिन भी कमजोरी की डालते हैं तो फिर वो दूसरे दिन भी हमको तंग करती है, लेकिन हमें उस आदत को सुधारना भी है और कमाई भी करनी है, तो अपने ऊपर इतना अटेंशन भी रखना है, तभी कमाई कर पाएंगे। समय कौन सा है, संगम युग का समय है, वैल्यूबल है, लास्ट का अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा है कि ये 84वां जन्म, उसमें भी थोड़ा सा जन्म जिसमें हमें बहुत काल की प्राप्ति करनी है, पूरे 21 जन्मों के लिए कमाई जमा भी करनी है और 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं। तो इतना अटेंशन हमारा जब अपने ऊपर रहता है तो हम अच्छी तरह से उन बातों को कैच कर पाते हैं, बाबा की बातों को, और अमल में ला पाते हैं, फॉलो फादर कर सकते हैं। जैसे बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली चली थी तो उसमें बताया, आज भट्टी वालों को बताया ना, कि कोई भी बाहर का याद न आए। पहले पहले दादियां बताती थी कि 7 दिन बाबा भट्टी में रखते थे तो कोई किसी को पोस्ट कार्ड भी लिखने का कोई अनुमति नहीं होती थी, कि किसी की याद भी अगर आई तो दोबारा फिर से 7 दिन याद में बैठो, ऐसे बिठाया जाता था, ऐसी भट्टी होती थी। और खाने के लिए भी बिल्कुल हल्का। एक बारी हम चंद्रमणि दादी जी का क्लास सुन रहे थे तो दादी जी ने बताया कि साकार बाबा ने बताया कि बच्चे तुम भट्टी में हो, भट्टी में हो तो जल्दी उठ करके भट्टी करना है, और 2 बजे उठते थे और भट्टी करते थे। तो बोला कि बच्चियों ऐसे 3 टाइम खाना खाओगे तो भट्टी कैसे कर पाओगे, देखो भोजन का भी बड़ा महत्व है। तो वो बाबा ने उसमें बात बताई कि बच्ची योगी का भोजन तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, तो बाबा ने अपना भोजन किस प्रकार का बताया, क्योंकि उसके द्वारा भी क्या होता है, हमारे ब्रेन पर असर होता है। और खाना खाने के बाद में आप देखो अक्सर कर नींद का समय हो जाता है, इसलिए बीच में वर्कशॉप या ऐसी चीज रखनी पड़ती है। तो कितना स्वराज्य अधिकारी बनकर प्रकृति के बीच में चेतना से बैठना होता है, तब जाकर के जागृति रहेगी, तब हमारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, तो हमें किसी भी प्रकार के माया के भूत तंग नहीं करेंगे, श्राप नहीं देंगे, और बाबा की आशीर्वाद स्वतः मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं ना, अपने पर स्वयं आशीर्वाद करो, तो स्वयं हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो बाबा की दुआएं भी मिलेगी, परिवार की दुआएं भी मिलेगी। तो उस मुरली में जैसे बाबा ने बताया, देह के संबंध, और क्या बताया, देह के पदार्थ, और क्या बताया, देह के स्वभाव संस्कार। तो ये 4 बातें जो बाबा ने बताई, तो ये भट्टी के लिए ये लागू हो जाती है ना, 4 बातें, कि कोई भी बाहर का याद न आए। भट्टी माना मैं अकेला, एक मैं और एक बाबा, एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, वरदान में बाबा ने क्या बताया, हाँ निश्चय बुद्धि बनना है, लास्ट की बात हो गई, निश्चय बुद्धि भव है। निश्चय बुद्धि के पहले एक शब्द और कौन सा, त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। उसके पहले क्या था वरदान? स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले। बाप दादा को हम अपने ऊपर कुर्बान कराएं तो हमारी चलन किस प्रकार की होगी? तब बाबा कुर्बान जाएंगे। हर एक पर तो कुर्बान नहीं जाएगा ना। जो उनकी श्रीमत पर कदम रखेंगे, जो आज का वर्क मिला है वो हम प्यार से करेंगे, अच्छी रीति करेंगे, याद में रहेंगे, पवित्रता का पालन कैसा करना है वो करेंगे। तो सारी बातों को श्रीमत के प्रमाण कि एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, तो उसी के सहारे सब कुछ, तब जाकर के वो हम कर पाएंगे, अपने ऊपर बाबा को कुर्बान करवा पाएंगे। इसके लिए बाबा ने चार बातें और वरदान में बताई। वो कौन कौन सी चार बातें थी? खुशी, शक्ति, शांति और सुख। ये चार बातें बाबा ने उसमें बताई। तो चारों का अनुभव किस प्रकार से करना है? आगे क्या था वरदान में? और लोक लाज, इसका भी त्याग। लोक लाज कुछ नहीं, एक बाबा जो कह रहा है वो हम पूरा अमल में लाएंगे। फिर स्लोगन में क्या था? सहज योगी वो है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं, क्योंकि कर्म करते हुए भी हम याद में रहें, हर कर्म हमारा याद में हो। देखना, बोलना, सोचना, जो भी हम कर्म करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चाल चलन है, सब प्रकार का एक्शन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, याद में रहेंगे तो देवी देवताओं के जैसा हमारा एक्शन होगा, है ना? जैसे मम्मा बताती थी कि कभी कोई जोर से भी चलता था ना, तो भी मम्मा बोलती थी कि धरती को भी, मम्मा इस प्रकार से चलती थी कि क्लास में आई तो किसी को पता भी न लगे, चप्पल का आवाज भी जरा सा न आए, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं, है ना? तो देखो, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाबा हमारे ऊपर किस प्रकार से इशारे देते हैं हमको और कैसे देवता बना रहे हैं, क्योंकि एकदम शूद्र पतित है ना, लोहे की बुद्धि जो बन गई, तमो प्रधान बिल्कुल बन गए, जिनमें कला का नाम नहीं रहा, कलाहीन हो गए, ऐसे को बाबा फिर से हमको देवतुल्य हीरे तुल्य बना रहे हैं। तो कितनी मेहनत बाबा करते हैं, तो उस मेहनत के अनुकूल हमें भी श्रीमत के अनुसार हर कर्म में फॉलो करना है। यहां से जाने के बाद में भी ये भट्टी की बातें अच्छी तरह से साथ में लेकर जाना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, तुम यहाँ भट्टी में हो, यहाँ भट्टी में माना आप आकर के यहाँ भट्टी में नहीं है, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे इस दुनिया में रहते हुए भी भट्टी में है सारे, है ना? क्योंकि हमारी पालना स्वयं भगवान के द्वारा हो रही है और हम दुनिया से न्यारे हैं, हम पांडव सेना के हैं और पांडव पति हमारे साथ में है, तो हम हमेशा भट्टी में है, अकेले नहीं है, भगवान के साथ में है। साथ की स्मृति रहेगी तो हर कार्य में हमारी विजय निश्चित होगी, वरना साथ में नहीं है तो, साथ का स्मृति भूल गए तो फिर क्या होता है? विस्मृत हो जाने से ही सब कुछ हो जाता है, उल्टा हो जाता है। स्मृति है तो सुख है, चैन है, सब कुछ है। स्मृति है तो सर्वशक्तियां काम में भी कर रही है, सारी याद है हमें, ताजा है, एनर्जी है। और स्मृति नहीं है तो भूल गए तो माया रावण के पुराने संस्कार, पुरानी चीजें, पुरानी बातें, वो सब याद आएगी। तो अधिक से अधिक स्वदर्शन चक्र फिराना है कि हम कौन थे, हम फिर से क्या बन रहे हैं, बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है। तो मुरली का रिवीजन हम यहीं तक करते हैं, हो गया मोस्टली, तो हो गया अच्छी तरह से। और इसके बाद में आपको भट्टी वालों को एक विशेष कविता, बहन जी ने बोला कि कविताएं लिखते हैं, तो आपको एक कविता भट्टी वालों को सुना देता हूं। अच्छा देखो, जो स्नान करके आ सकते हैं तो अमृत वेले में भी कोई कोई स्नान करके बैठे, नहीं तो हम कम से कम हाथ मुंह धुलाई करके और जरूर आकर के प्रॉपर बैठे, क्योंकि ये तपस्या है, साधना है। और कोई भी साधना में, आज भक्ति मार्ग में भी कोई साधना करता है तो किस प्रकार से बैठते हैं, अपना आसन अलग रखते हैं, बैठने के स्थान को साफ स्वच्छ रखते हैं, और जब ये देखो नवरात्रा करते हैं और करते हैं तो पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो सब भी बातें, लेकिन हमारी पवित्रता कौन सी, ये तो बाबा ने ही बताई है। जो स्वप्न तक भी बाबा ने बताया पवित्रता, केवल ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न सभी प्रकार की पवित्रता। तो वो सूक्ष्म जांच है हमारी, और ये एक सूक्ष्म चेकिंग है अंदर का अंदर कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं कि नहीं। बैठे हैं सजग होकर के बैठा हूं, राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, तो कर्मेंद्रियां सारी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई अंग ढीला डाला, इधर उधर वो हो रहा है, आंखें कहीं इधर उधर देख रही है, मन कहीं बाहर में भटक रहा है। नहीं, सूक्ष्म शक्तियां और बाहर की शक्तियां दोनों, कर्म इंद्रियां भी और मन बुद्धि संस्कार भी, मेरे राजा के कंट्रोल में है। बाबा देखो, ब्रह्मा बाबा किस प्रकार से भक्ति मार्ग में भी अपनी दरबार लगाते थे, है ना? सभी ने सुना होगा ना कि कैसे बाबा दरबार लगाते कि ये कर्म इंद्रियां कर्मचारी है, मैं राजा हूं, ये मन बुद्धि संस्कार, मेरे कहे अनुसार चलना चाहिए, मन मंत्री जैसे मैं कहूं वैसे तुझे चलना है ना? तो वो सारी दरबार लगाना। तो इसी प्रकार से मन के अंदर सूक्ष्म में ये सब चलता रहेगा तो फिर नींद नहीं आएगी, तो फिर वायुमंडल अच्छा बन जाएगा। और जहां तक है अगर कोई नहा धोकर के नहीं आते हैं तो भी कोई अर्जा नहीं है, क्योंकि हमने देखा अधिकतर सभी ऐसे ही बैठते हैं। लेकिन जिनको अच्छी साधना करनी है, सुस्ती उड़ानी है, अगर किसी को ज्यादा सुस्ती आती है, नींद आती है, तो अच्छा है कि नहा धोकर के भी आ जाए। यहाँ पर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ गर्म पानी भी मिल जाता है, दूसरा भी है, घर में सब कुछ करना होगा। लेकिन साधना अगर करनी ऐसा लक्ष्य रखते हैं तो हम इस रीति से कर सकते हैं। हाँ, मुरली में तो नहा करके आना ही आना है, ये तो हम ब्राह्मणों की स्वच्छता है। और कहीं पर भी हम बाथरूम में जाते हैं या लेटरिन के लिए गए और गए, तो वहां पर तो नहा धोकर के वापस आना ही है। अगर बीच में आपको कहीं जाना पड़ा तो उसमें तो नहा धोकर के आएंगे। कई नए बच्चे हैं तो हो सकता है उनको ये नियमों का भी पता न हो, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत अभी जो भी आए हैं तो कई ऑनलाइन संपर्क के आधार पर भी आए होंगे। तो नए बच्चों को भी ये भी ध्यान में होना चाहिए कि हमारी मर्यादाएं नियम किस किस प्रकार के हैं। कहीं पर भी हम जाते हैं अगर बाथरूम के लिए और के लिए, जहां लेटरिन के लिए, तो फिर हमको आकर के वस्त्र भी बदलने हैं और नहाना धोना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तपस्वी नहीं बन सकते हैं। बाहर की स्वच्छता भी चाहिए और मानसिक अंदर की स्वच्छता भी चाहिए, तभी शेरणी का दूध सोने के बर्तन में रुकता है। तो पवित्र बुद्धि में फिर ये ज्ञान के रतन ठहरेंगे और इनका मनन चिंतन चलेगा और दिन भर में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो माया नजदीक नहीं आएगी। जैसे बाबा बोलते हैं ना, पंखा चलाओ तो क्या होता है, हवा आती रहेगी तो मक्खी मच्छर नजदीक नहीं आएंगे, अगर पंखा बंद कर दिया तो आएंगे। उसी प्रकार से स्वदर्शन चक्र चलता रहा तो असुर माया के वो नहीं आएंगे। अगर स्वदर्शन चक्र उल्टा फिर गया, जैसे बाबा ने बताया परमत परदर्शन, है ना, ये सारी बातें भी बताई थी ना अव्यक्त मुरली में, तो अगर उल्टा चल गया, दूसरों को देखने लग गए, नींद आने वालों की तरफ हमारा ध्यान रहा कि ये तो सोता रहता है, वो भी चिंतन नहीं, लेकिन उसको अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि मेरे को भी नींद आती थी लेकिन कैसे मैंने जीत प्राप्त की, तो उसको भी ऊंचा उठाना है। किसी की बुराई कमी को देख करके, हम सभी में कमियां बहुत थी, भगवान किस प्रकार से हमारा सुधार कर रहे हैं, तो कमियां नहीं देख करके एक दूसरे की विशेषता का वर्णन करना है और एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। तो अभी आपके लिए एक कविता, और कुछ पूछना तो नहीं किसी को? बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाच, ये आपके लिए कविता है, आप इससे अपनी तुलना कर लेना, चेकिंग भी कर लेना। बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, आत्मा सच्चा सोना बनती, भस्म होती खाद, स्वयं की राजा बनती और हो जाती आजाद, बोझ सभी हल्के होते, लाइट का मिलता ताज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, सर्व शक्तियां भर जाती, आत्मा होती आबाद, फिर से धनी बन जाते हैं जो बन चुके मोहताज, इंद्रियां वश में हो जाती, शांति का आता राज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। पांच विकारों की बुस्ती, 63 जन्मों की आग, अलबेलेपन की नींद से होते सभी सुजाग, भट्टी में पकने से मीठी बन जाती आवाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। रियलाइजेशन हो जाती, चेतनता जाती जाग, तत्व सभी सहयोगी बनते पानी पृथ्वी आग, आने वाली बातों का भी लग जाता अंदाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। योग भट्टी से होता सारी दुनिया से वैराग, आधा कल्प से लगे हुए मिट जाते सारे दाग, एकांत का अनुभव होता करते काम काज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। ओम शांति।